फ्लाइट 182 को इन 1985 जो है ब्लो किया था। अगर ये नहीं था तो इस तरह के जो है सिख मिलिटेंट्स थे जो कि उन्होंने जबान इस्तेमाल की है इंडिया ने अपनी डिमार्च में, तो उन्होंने कहा जी कि अटलांटिक ओशन में जो ये इन्होंने ब्लो किया था उसमें 329 जो लोग थे वो सबकी सब डेथ हो गई थी, जिसमें से 268 जो थे वो कनेडियन नेशनल्स थे। तो ये किसने प्लांट किया था? ये इसी तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिखों की, उन्होंने किया था। इन्होंने पहली दफा डिमार्च जो है वो भेजा था कुछ दिन पहले कनाडा को, और अब ये वो कह रहे हैं कि जो सेकंड डिमार्च हम इसलिए भेज रहे हैं कि सेकंड रेफरेंडम 6 नवंबर को पॉल कॉफी एरिना में यहां पे मिसेस सागा में होगा। पहला जो था वो ब्रैम्पटन में होया था सितंबर 19 को, तो इसको आप रोकें, इसको रोकें, क्योंकि ये जो है हमारी जो न्यू दिल्ली की जो है वो रवायत है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कि हमने कनाडा को, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कनाडा को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि न्यू दिल्ली इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी एंड अपसेट, क्योंकि आपने कोई इफेक्टिव जो काम है वो खालिस्तानी ये जो एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ नहीं दिया। ये कॉन्स्टेंटली सिख रेफरेंडम्स यहां पे करा रहे हैं और जो है ये बैंड है इंडिया में, इनकी कोई जो है लेजिटिमेसी नहीं है, ये हेट जो है वो फैला रहे हैं सिर्फ। तो हम डिप्लोमेटिक चैनल से आपके साथ चलना चाहते हैं लेकिन आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
Encyclomedia te Lashri Films di peshkash. The Legend of Mola Jutt.
Madani Jutt, sir chuka ki maafi mangana le dine. Sir utha ke ka jana le di ondi hai.
The Legend of Mola Jutt featuring Fawad Khan, Hamza Ali Abbasi, Mahira Khan te Homaima Malik. Nirdeshan Bilal Lashri. 13 October ton tuhade nazdiki cinema ch. A Moviegoers Entertainment release.
ਪੌਲ ਆ ਗਿਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਲਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਨਸਰਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਈਨ ਟੇਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 20% ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ destinationontario.com
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਪੌਲ ਕੌਫੀ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ट्रिक और ट्रीट इस हेलोवीन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के हर छोटे बड़े के लिए 14 से 29 अक्टूबर सेलेक्ट सिटी ऑफ ब्रैम्पटन रिक्रिएशन सेंटर पर फ्राइट नाइट का इंतजाम किया है। इन सरगर्मियों में बलून आर्टिस्ट, एयरब्रश टैटू, मार्शमेलो रोस्टिंग और बहुत कुछ। आइए अपनी फैमिलीज के साथ और अपना फ्री ट्रीट एक्सेसिबिलिटी लॉन साइन लेकर जाएं। दिस हेलोवीन मेक ट्रिक एंड ट्रीट एक्सेसिबल टू ऑल। मजीद जानिए brampton.ca/frightnight।
ਲਓ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਕਾਲ 905-874-7171।
जी, तो मतलब ये है कि इंडिया काफी भड़का हुआ है कनाडा के ऊपर, है जी, वो कह रहे हैं भाई तुम व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री, है जी ये भी। अच्छा जी, अच्छा अब तो जो कनाडा है वो कह रहे हैं जी कि ये तो चूंकि अब पीसफुली कर रहे हैं तो अब हम इनको क्या कहेंगे ना, आप अगर डिसरप्शन नहीं पैदा कर रहे, तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हंगामा नहीं कर रहे, तो एक पीसफुल एक वो रिफरेंडम कर रहे हैं,
कहने का मकसद है कि कनाडा फिर फंस गया बेचारा।
हाँ, मासूम है,
चाइना के साथ फंसा, सऊदी अरब के साथ फंस गया,
इनके पास हमारे जैसे बंदे नहीं है ना मजद भाई, वो निगोसिएशन करने वाले,
तो इसलिए इंडिया के साथ
हाँ, फंस गया। अच्छा जी, अच्छा जी, आज एक और भी झटका लगा है इंडिया को, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरपोल को, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उनको आज कहा है कि ये जो सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं, इनका नाम है गुरपतवंत पन्नू, इनको आप ये खालिस्तान की कैंपेन बड़ी जोरों शोर से कर रहे हैं, तो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें फॉर टेरर चार्जेस इनके अगेंस्ट, और इनको पकड़ के हिंदुस्तान में लाएं ताकि इनको अंडर एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ताकि इनके ऊपर जो केस किया जा सके और ये सरेंडर करें इंडिया में। इंटरपोल ने कहा है जी कि हम इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी करेंगे और ना ही हम इसको पकड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आपके ये जो एलिगेशंस हैं, इंटरपोल ने कहा है वी हैव फाउंड के जो इंडियन गवर्नमेंट के एलिगेशंस हैं वो पॉलिटिकल और रिलीजियस इन नेचर हैं, और उसमें क्राइम की कोई एविडेंस उन्होंने हमें नहीं दी है कि इस बंदे ने कोई क्राइम किए हैं, और हम इनकी जो रेफरेंडम 2020 की जो कैंपेन की लीगैलिटी है उसको एक तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अगर ये रेफरेंडम में पीसफुली कर रहे हैं, जब तक ये पीसफुली रहेंगे, पीसफुल रहेंगे और डेमोक्रेटिक मींस से अपना रेफरेंडम करेंगे, इनको ना तो टेररिस्ट कहा जा सकता है ना इनके लीडर्स को पकड़ा जा सकता है। तो ये एक और जो है बड़ा वो हुआ। अच्छा जनाब, एनडीटीवी की रिपोर्ट है और इसके मुताबिक एक बीजेपी का सपोर्टर है जगदीशा गौड़ा, इसके खिलाफ जो है वो बहुत ही संगीन आज इल्जाम लगाए गए हैं कि इसने 16 लोगों को जो दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे उनको कई दिन तक अपनी जो कॉफी प्लांटेशन कर्नाटका के चिका मगलारू का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर लॉकअप रखा, और इसमें एक लेबरर जो थी उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो 20 साल की लड़की थी अर्पिता, उसका बच्चा जो है वो भी जाया हो गया, शी वॉज प्रेग्नेंट। इसके अलावा इसने असॉल्ट किया दो और जो वहां पे लेबरर औरतें थी, रूप और कविता, उसके ऊपर। उसके बाद ये जो है ये किसी तरह से एस्केप करके ये बाहर गई, इन्होंने कंप्लेंट की, अर्पिता को हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन उसका बच्चा जो है उसने लूज कर दिया, और उसके बाद फिर जो है पुलिस ने इसके ऊपर डाला हाथ और इसको ढूंढने की तो कोशिश कर रहे हैं, इसको इसके बेटे को, लेकिन ये भाग चुके हैं। बीजेपी ने मीनवाइल कहा जी कि ये हमारा सपोर्टर है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए अगर आपने पुलिस ने कोई एक्शन लेना है तो वो ले सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी है। सीएनएन ने आज रिपोर्ट किया जी कि एक 15 साल की बच्ची जो थी इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, उसको हॉस्पिटल में लेकर आए थे और उसकी हालत काफी खराब थी, जिसमें कि उसकी जो है फिर अब लग रहा है कि डेथ हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि एक आदमी जो एक लड़का जो कि इसका कजन था, 18 ईयर्स का था, उसने अपेरेंटली कोई 3 मंथ्स पहले इसको लड़की को रेप किया, और फिर जब इस लड़की ने बताया कि शी इज प्रेग्नेंट तो इसने इस बहाने के पीछे कि हम तुमसे शादी में करना चाहता हूं तुम मेरे घर पे आओ, ये जब आई तो इस लड़के की मां ने और इसने मिलकर उस बच्ची के ऊपर जो प्रेग्नेंट थी उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और उसको जला दिया, जला के मार दिया उसको तकरीबन। तो जब हॉस्पिटल में बहरहाल जब पहुंची तो उस वक्त तक तो वो जिंदा ही नहीं थी। तो इसके ऊपर जो है अब वहां पे यूपी के जो सीनियर पुलिस अफसर हैं कमलेश कुमार दीक्षित, उन्होंने अब इसको के खिलाफ जो है लड़के और उसकी मां के खिलाफ एक FIR लिखी है, लेकिन अब जिस तकलीफ में उस बच्ची को मार दिया वो तो मार दिया। तो आज CNN इस खबर को कवर कर रहा था, और उन्होंने और भी कहा है कि किस तरह हिंदुस्तान में बच्चियों के ऊपर तेल डाल के उनको जला दिया जाता है, और जो स्पेशली जो लोअर कास्ट की बच्चियां उनको उठाया जाता है, मारा जाता है, रेप किया जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। लाहौर के अंदर तो जी हम बड़ी दफा कह चुके हैं मैं और माजिद भाई के अगर आपके केस दुनिया के किसी हिस्से में फंसे हुए हैं लाहौर हाईकोर्ट के पास लाएं, आप सब बच जाएंगे उन केसों से, हैं जी, हमारी बात सुने। देखें, एक तो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, पाकिस्तान का भी भला होगा और आपको भी बेल मिल जाएगी, तो विन विन सिचुएशन है, हैं जी। तो आप सारे केसेस दुनिया में से हटाएं और पाकिस्तान लेकर आएं, लाहौर हाईकोर्ट लेकर, सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट। جی ٹھیک ہے. اچھا جی, آج لارا وائٹ کی جو اسپیشل ایک جناب کورٹ ہے اس نے جناب پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے بیٹے جو ہیں حمزہ شریف ان دونوں کو ایکوٹ کر دیا ہے 16 بلین روپیز منی لانڈرنگ کیس میں. حالانکہ ایف آئی اے کے جو پروزیکیوٹر تھے فاروق باجوہ انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ اب ان کو جو ہے حمزہ صاحب کو نہ چھوڑیں کیونکہ یہ ایک اور 25 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کیس میں بھی انوالوڈ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف اب کیس ابھی رکھیں جگہ کے اوپر تاکہ ان کے اوپر پوری پروب چلائی جا سکے اور جب تک ان کو انڈائٹ نہ کیا جائے ان سسپیکٹس کو اس وقت تک آپ ان کو نہ چھوڑیں. لیکن جی اس نے عدالت نے کہا کہ چونکہ تم نے پراپر ایویڈنس ان کے خلاف نہیں لائی ہے تو اس لیے ہم جو ہے یہ ان کی جو ہے کیسز جو ہے ان کو خارج کر رہے ہیں. اور ویسے تو ان دونوں کو کہا تھا پرائم منسٹر کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی کہ آپ نے خود سے اپیئر ہونا ہے. پرائم منسٹر نے کہا جی میں تو بڑا بجی ہوں, تو ان کے بیٹے نے کہا جی میں بیمار ہوں. تو ہاں جی, تو بس ان کا پھر وہ آیا تھا جو ہے وہ لائر آیا تھا تو اس نے کہا جی یہ نہیں آ سکتے, یہ بجی ہیں بڑے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں جی قزاقستان اب پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ دو دن کا سمٹ ہو رہا ہے, 6th سمٹ آف کانفرنس آن انٹریکشن کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا. یہ استھانا کے اندر ہو رہا ہے, ان کا جو کیپٹل ہے قزاقستان کا اس کے اندر. اس میں ان کے ساتھ جو تھے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف, انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب, منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم مصدق ملک اور بھی بے شمار اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ان کے ساتھ تھے. تو یہاں پہ بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہم کو اپنی فوڈ پرائسز اور انرجی جو کرائسز ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, انگیجمنٹ اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اور زیادہ بڑھانا پڑے گا, اور یہ جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہم جیسے چھوٹے ملک اتنا سفر کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان صاحب کی پلی جو ہے اس کو اپروو کرتے ہوئے جو ان کو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ دی ہے ان پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس میں, اور کیس کو کیا ہے نیکسٹ تاریخ انہوں نے اکٹوبر 18th دی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو شورٹی بانڈ جو ہے 5000 روپیز کا بھرنا پڑے گا اور اب آپ کی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 18th اکٹوبر کو ہوئے گی. میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے باہر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو عدالت ہے یہ بار بار مجھے بلا لیتی ہے, اور مجھے انہوں نے کہا تھا جی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے کہ تم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آ کے ملنا ہے, تو میں تو آ گیا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی واحد ایک ایسی پاکستان میں جماعت ہے جو کہ بالکل لیگل طریقے سے اپنی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے, لیکن باقی اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ بات نہیں کر سکتی. ان کے خلاف جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ڈالا گیا تھا دیٹ واز انڈر دا سیکشن آف فارن ایکسچینج ایکٹ 1947, تو انہوں نے کہا جی میرے اوپر تو ڈال دیا ہے, دوسری پارٹیز پہ بھی یہ ایکٹ ڈالنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کتنے فراڈولنٹ طریقے سے یہ پیسے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ڈسپائٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے, وہ جو ہیں بہت ہی بائسڈ قسم کے بندے ہیں. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو آج دیا ہے, اور انٹرویو بھی دیا اور ایک جرنلسٹوں سے بات بھی کر رہے تھے لاہور کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ایز پرائم منسٹر جو 3.5 سال میری حکومت تھی اس میں میں رسپانسبل تو تھا, لیکن اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اور ایکچول رول جو تھا وہ ان کا چلتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اگر میری گورنمنٹ کو پوری آزادی دی جاتی تو ہم شیر شاہ سوری کی طرح کی حکومت قائم کرتے جو کہ فاؤنڈر تھے سور ایمپائر کے انڈین سب کانٹیننٹ میں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جون میں جو سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی کہا تھا کہ ان کو ایبسولیوٹ پاور نہیں دی گئی تھی اور پاور کے جو سینٹرز تھے وہ کسی اور جگہ پہ تھے. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جس رات میرے اوپر نو کانفیڈنس موو کا ووٹ لایا گیا تھا اس میں انہوں نے جو آرڈرز ایشو کیے تھے وہ اسی لیے کیے تھے کہ ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا جا سکے, اور عدالتیں جو ہیں وہ کانسٹنٹلی پی 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 اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ اسی لیے اب کیسز ختم کرتی جا رہی ہیں. میری گورنمنٹ کو ہمیشہ ویک کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں کوالیشن میں تھا, اور کوالیشن میں کچھ کام تو اچھے ہوئے کچھ خراب ہوئے کیونکہ مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا, میں پورے اپنے ایکشنز خود نہیں لے سکتا تھا. اب اگر ایسا کوئی وقت آیا تو میں پھر سے ری الیکشن کراؤں گا, میں کوالیشن گورنمنٹ نہیں بناؤں گا تاکہ ہر طرح کے فیصلے جو ہے ہم خود کر سکیں. اور یہ جو آرگنائزیشن لائک نیب ہیں یہ ہمارے انڈر نہیں ہوتی, ان کو کچھ کوئی اور ہی لوگ چلاتے ہیں, تو جو چلاتے ہیں پھر وہ ان کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں. اور جناب جو نوبل پرائز ونر ملالہ یوسفزئی ہیں وہ پاکستان پہنچی ہوئی ہیں, اور انہوں نے بہت سارے فلڈ والے علاقوں میں جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, خاص طور پہ سندھ کے جو علاقے ہیں, اور وہاں پہ ये रूरल सिंध में वहां पे औरतों से और बच्चियों से मिली हैं, और जो एक स्टेटमेंट आई है सिंध चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, उसमें उन्होंने कहा कि इन औरतों की उन्होंने बड़ी तारीफ की, जिनके के पूरे पूरे घर और जो विलेजेस थे वो समंदर के वो पानी के नीचे चले गए थे, और उनको कहा जी कि आप बड़ी ब्रेव खवातीन हैं, लेकिन उन्होंने अपना फिर भी जो फियर था वो शो किया कि 2 मिलियन बच्चे जो हैं वो क्लासें मिस कर रहे हैं, 12,000 स्कूल्स जो हैं वो डैमेज्ड हैं, तो उसके ऊपर फौरन जो है वो काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जनाब जो एक रिपोर्ट आई है, मोहम्मद अली रऊफ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रॉमिस रिहैबिलिटेशन सेंटर से, और उन्होंने दुनिया में जो आज रिपोर्ट्स आई हैं WHO की और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, न्यूयॉर्क के बाद कराची जो है दुनिया का सेकेंड बड़ा के शहर है जिसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम की जाती हैं, नॉट इवन बॉम्बे, कैन यू इमेजिन, नॉट इवन बॉम्बे एंड दिल्ली, या न्यूयॉर्क के बाद जो है कराची ऐसा बड़ा जो है वो शहर है। 2019 में यहां पे जो कैनबस थी 41.95 मेट्रिक टन्स कराची के अंदर कंज्यूम की गई थी, जबकि न्यूयॉर्क के अंदर जो थी वो 77.44 मेट्रिक टन्स की गई थी। वो कहते हैं जी कि जो कराची के अंदर पार्टीज होती हैं और रिक्रिएशनल पार्टीज हैं, उसके अंदर ये एक्सटेसी, मेटामेथाफीन, LSD, इन सबको पार्टी ड्रग्स अब समझा जाता है। 6.7 मिलियन ड्रग्स जो हैं वो यूज की जाती हैं, ज्यादातर इसके अंदर कोकेन, ओपियम और हशीश होती है, और इसकी जो इलीगल ट्रेड है पाकिस्तान में दैट इज वर्थ $2 billion पर ईयर। और नेशनल इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोकेन की जो स्ट्रीट प्राइस है इस वक्त कराची में और दूसरे इलाकों में दैट इज 8,000 रुपीज से लेके 20,000 रुपीज पर ग्राम है। WHO ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोकेन और क्रैक कोकेन यूज होती है, जिसका के अब इंक्रीज हो गया है यूज 19% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। पाकिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कहा है कि 40% ऑफ अफगान ड्रग्स जो पाकिस्तान से पास होके जाती हैं वो हेरोइन और चरस हैं, और वो ज्यादातर यहीं पे रह जाती हैं, आगे भी कम ही जाती हैं। तो ये बड़ा जनाब जो है सोर्स ऑफ कंसर्न है। और जनाब एक नया आज पोस्टर सा आया है इंडियन आइडल 13 का, एक प्रोमो सा आया जो देखते हैं आप, उस प्रोमो में देखा जा रहा है कि शर्मिला टैगोर और तनुजा जो है वो देखी जाएंगी, और इसके अंदर जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि एक कंटेस्टेंट है उसके साथ शर्मिला टैगोर जो हैं वो ऑन स्क्रीन वही मोमेंट्स जो उनकी 1969 की फिल्म थी आराधना जो राजेश खन्ना के साथ आई थी, वो जो है ये कंटेस्टेंट ऋषि सिंह के साथ कर रही है रिक्रिएट, जिसमें कि वो गाना गा रहा है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसमें कि वो ट्रेन में बैठी हुई थी, तो यहां पे भी वो ट्रेन में बैठी हुई नजर आ रही है, वही जो है टॉय ट्रेन वही सीन उन्होंने क्रिएट किया है, और बुक भी वही पकड़ी हुई है जिसका के हेडलाइन था वेन 8 बेल्स टोल बाय एलिस्टर मैकलीन, तो इन्होंने वो लुक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक इंटरव्यू आया जी हेमा मालिनी साहिबा का, क्योंकि कल जो थी अमिताभ बच्चन की अक्टूबर 11th को कल अमिताभ बच्चन की बर्थडे थी, तो उस मौके पे एक इनका इंटरव्यू हेमा मालिनी ने जो है वो दिया है, और उन्होंने कहा जी कि अमिताभ बच्चन जो अब 80 ईयर्स के कल हुए हैं वो वैसे ही हैं जिनको मैं पहले दिन से मैंने देखा था, वो जब नई फिल्मों में एंटर हुई थी 1970 में जब काम कर रही थी फिल्म अभिनेत्री के अंदर, तो ये बिल्कुल क्वाइटली सारा दिन सेट पे बैठे रहते थे और सिर्फ काम के वक्त अपना काम करते थे, अब भी इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, अब भी ये सीरियस हैं और कभी कभी तो ये बड़े ग्रंपी हो जाते हैं। मैंने जब इनके साथ फिल्मों में काम किया तो मैंने कहा हाय रब मैं क्या इनके साथ बात करूंगी, लेकिन हौले हौले फिर ये मेरे से बात करने लगे, और फिर बहुत अरसे के बाद जब हमने बागवान में बात काम किया तो मैं इनके पास गई और मैंने इनसे कहा कि भाई हम फिर से काम कर रहे हैं, आप कोई बात तो करें मेरे से, हम क्या करेंगे, हम दोनों आप भी चुप बैठे रहेंगे मैं भी चुप बैठी रहूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। और जनाब जो XXL का जो टीजर है ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो रिलीज हुआ है, हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा उसके अंदर देखी जा रही हैं, दोनों मोटी लड़कियां हैं और अपनी अपनी जो वो चीजें हैं वो उसके अंदर शेयर कर रही हैं, तो लोग जो हैं वो बड़ा उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मोटी औरत तो जाहिर है आपको किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये बड़ी फन फिल्म है। एंड जनाब बहुत ही ज्यादा अजाब टूट पड़ा है प्रियंका चोपड़ा पे, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा साहिबा ने कह दिया है कि जो ईरान के अंदर औरतों के साथ हो रहा है वो बड़ा ही गलत हो रहा है और मुझे उसका बड़ा अफसोस है और मैं बड़ा सलाम पेश करती हूं ईरान की बहादुर औरतों पे। तो इसके ऊपर जी सोशल मीडिया बड़ा भड़क गया है, उन्होंने कह दी प्रियंका चोपड़ा साहिबा जो है ईरान की औरतों के लिए तो बड़ी बड़बड़ के बातें कर रही हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के इनके अपने मुल्क में जो दलित औरतें रेप हो रही हैं, उनको बर्न किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को मारा जा रहा है, या जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उसके ऊपर तो इनका कभी कोई एक लफ्ज़ नहीं उठता। मोदी जी को ये सब के साथ पोज करने में इनके कोई क्वाम्स नहीं है, उनको इन्वाइट करती हैं, लेकिन बीजेपी की जो ब्रूटैलिटी है उसके अगेंस्ट नहीं ये बोलती हैं। हिजाब के अगेंस्ट मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या किया जा रहा है बच्चियों के साथ, उसके ऊपर तो इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। इन्होंने कभी भी वो चीजें जो है उनका इकोनॉमिक बायकॉट नहीं किया जिसके के ऊपर जो है बीजेपी के लॉ मेकर्स जो हैं वो बात करते हैं, जैसे वो कहते हैं जी मुसलमानों के साथ जो है बिजनेस ना करें, तो अपने तो मुल्क में ये बात नहीं करती। अभी जो हिंदुस्तान में हुआ था जहां पे कहा गया बच्चियों को कि हिजाब ना पहनो, उसके ऊपर इनकी कोई आवाज नहीं आई। फ्रांस में जब कहा गया था कि हिजाब ना पहनो, उसके ऊपर इनकी कोई आवाज नहीं आई। जब कश्मीर में, पैलेस्टाइन में, अफगानिस्तान में औरतों को टॉर्चर, रेप और मर्डर किया जाता है अलॉन्ग विद इंडिया, उसके ऊपर कभी इनकी कोई आवाज नहीं आई। तो हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करने के बजाय गोरों के को खुश करने के लिए ये ईरान की औरतों की बात कर रही हैं, तो बड़ा इनके ऊपर आज जो है वो आया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जी आज बड़ी खबर है, और उसके मुताबिक बड़ी, इन्होंने तो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने तो नहीं कहा, लेकिन बाकी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बड़ी साजिश की गई है, क्योंकि सौरव गांगुली को अब बीसीसीआई के ये जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा के 1983 वर्ल्ड कप के जो विनिंग हीरो थे रॉजर बिनी, 67 ईयर्स उनकी एज है, उनको अब लाया गया है। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनको अभी तक जो है वो सेक्रेटरी रखा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, राजीव शुक्ला वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह जो हैं वो आईपीएल के चेयरमैन रहेंगे, और महाराष्ट्र बीजेपी के जो लीडर हैं आशीष सेरी वो न्यू ट्रेजरर रहेंगे, आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो अब जो हैं वो रिप्लेस करेंगे, उनके जो एड हैं वो रिप्लेस करेंगे जॉर्ज जैश को एज ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के अंदर ये जो सारा उथल फुथल आया है ये बड़े ही किसी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है उसने किया। अब वो सोर्स जो है वो कौन है और वो जो मिनिस्टर है वो कौन है, अब इसका तो पता चलेगा थोड़े दिनों में। एंड जनाब, जो न्यूजीलैंड है उसने जो ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को फिर से 48 रन से हरा दिया है। इससे पहले भी उन्होंने जो है वो इनको 8 विकेट से हराया था, तो अब दो बैक टू बैक डिफीट्स के साथ ये तो बांग्लादेश तो अब निकल गया है। अब फाइनल इनके साथ होएगा पाकिस्तान के साथ फ्राइडे को क्राइस्ट चर्च में, और जो है वहां पे अब ये जो पाकिस्तान का जो कल का मैच है बांग्लादेश के साथ उसकी तो अब कोई माने
थर्सडे नाइट फ्राइडे मॉर्निंग,
हाँ तो उसका अब कोई जो है वो मीनिंग नहीं है। और जनाब, क्रिकेट बोर्ड जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वो बहुत खुश है इसलिए कि वो लोग अब आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। 3 मैचेस यहां पे खेलेंगे 2005 के बाद जो है ये अब टेस्ट यहां पे हो रहा है, और इसके अंदर जो है बेन स्टोक्स जो कि नहीं नजर आए थे अब नजर आएंगे और अपना मेडन टूर करेंगे। पहला मैच पिंडी में, दूसरा मुल्तान, तीसरा जो है कराची में खेला जाएगा। एंड जनाब, एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, आईसीसी ने बैन किया है यूएई बेस्ड इंडियन क्रिकेटर माहिर शेयाकर को 14 साल के लिए, क्योंकि उनकी जो आईसीसी की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि ये जो यूएई बेस्ड इंडियन क्रिकेटर है इसने जो यूएई के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे में 2019 में उसने इसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी वहां पे। इसके अलावा जो ग्लोबल T20 फ्रेंचाइज जो कनाडा में खेला गया था 2019 में उसमें भी करप्शन क्रिकेट में लाने की कोशिश की थी, तो हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो कोई भी गेम को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। वी थैंकफुल टू डीएनए क्योंकि उनका हमने पिक्चर जो है तो कर्टसी पिक्चर डीएनए उनकी हमने यूज की है, लेकिन जो चयाकर हैं उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ जो चार्जेस हैं ये बिल्कुल फॉल्स हैं।
देयर यू गो। एंड आज जो हमारा एक प्रोग्राम है जो लोगों को बहुत पसंद है, पॉप म्यूजिक इन पाकिस्तान
जी,
दिशांत बड़ी मेहनत से प्रोग्राम को तैयार करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वक्त हमारे पास नहीं रहा आज, तो आज हम वो पेश नहीं कर सकेंगे।
अच्छा जी,
मगर अगले वेंसडे इंशाल्लाह ताला
उसको
फिर कंटिन्यू करेंगे हम। अगले वेंसडे को हमारे साथ रहेगा साहब,
फटे चकने ऐसी
ऐश करेंगे, ऐश
करेंगे, साढ़े नाल रोगे थे ऐश करोगे
है ना, साढ़े नाल रोग जी ऐश करोगे जी,
बिल्कुल
हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू मच भाई, थैंक यू सो मच। मेरी कल आपने दवाई लानी है,
पाकिस्तानी दवाई लानी है, और बख्या की खबरें इंशाल्लाह ताला कल
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरिसन नाउ 6472281000 हैरिसन ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
जी सामने नाजरीन, बस इसके साथ ही अब वक्त हुआ है आपसे इजाजत चाहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्रोग्राम को सुनने का, देखने का, पसंद करने का, कॉल्स का, एंड बशर्त जिंदगी इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते गुजारिश है, कहते जा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दराजात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बला से हमको सदा दूर रखना, इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बला से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां पना मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का होशा का होशाना बुगुंचा दिलों के चमन का, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सब के लिए ये दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation.
and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
tough love. Our factor presents the Lover Smasher.
Teri baahon mein jo safar tha mera, usse gali mein tujhe tera jaana.
Tere naam se milu, tere naam se mar
jaaun. Sunso ko jeene ka ishaara kya? Tuma main sunso ko ishaara.
सब्सक्राइब करिए सपना साफू ऑफिशियल चैनल को. अब लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए.
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे. कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे. ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा. इस चाहत में मर जाऊंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा.
कल मुझको इजाजत हो ना,
पर सांस लेना छोड़ दूं, तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं, ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ,
दिल की
टूट यारे की समझे अपने आप मेरे मगर दुखी की कर दी ये गल बस तू ही जान दी मैनू सफाइया पेश न कर रब को लो थोड़ा जी हाद सिख जाके प्यार कर दे बाबा झूठे संग साडे एक एक पल बेवफा 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 निकली है तू भी झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार किया है तू
जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद आती है किससे बहारों के बीते नजारों के किससे बहारों के बीते नजारों के फिर गा के सुनाती है और हमको रुलाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है तेरी याद आती है चांदनी जाकर इतना तो बताओ क्या ये चांदनी जाकर कोई ख्वाब जगाती है और तुमको सताती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है तेरी याद आती है जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो फिर भूल के सब बातें मेरे पास आ जाना और तोड़ के सब नाते मेरे पास आ जाना फिर लौट के मत जाना जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद आती है
आशिकों की आंखों में जो पानी है सब इन हसीनाओं की मेहरबानी है
Yeah. आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सुनी से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
तुम भीग न जाए है तू तो।